लीजिए, प्रस्तुत है नाटक जमीन। इसके लेखक और निर्देशक हैं माइकल होजेस।
तुमने कुछ सुना जानकी?
क्या, मैं तो दिन भर तुम्हारी बातें ही सुना करती हूँ। इसके सिवा मैं और सुनूं भी तो क्या?
बात बड़ी गंभीर है और तुझे ठिठोली सूझ रही है।
अरे धीरज के बापू, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक हमें बात पता ही कैसे चलेगी।
इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुमने कुछ सुना जानकी, मगर तू तो मेरी बातों को सुनने का रोना लेकर बैठ गई।
अच्छा अच्छा ठीक है, नाराज क्यों होते हो? ये तुम्हारे नाराज होने की उम्र नहीं है, वरना रक्तचाप बढ़ जाएगा। बोलो, क्या बात बताना चाहते हो तुम?
बात बड़ी गंभीर है जानकी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करने पर भी कभी राजी हो जाएगा।
तुम ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? कौन कैसा करने पर राजी हो जाएगा?
सुन भी पाएगी तू?
अब भगवान के वास्ते बता भी डालो तुम, क्यों बात छुपा छुपा कर मेरी धड़कन बढ़ा रहे हो?
अपने धीरज को तो जानती हो तुम।
मैं भला अपने बेटे को नहीं जानूंगी क्या? क्या किया है धीरज ने?
किया नहीं है, करने जा रहा है, करने की तैयारी चल रही है उसकी।
अरे अब बताओगे भी या यूं ही भेद भरे अंदाज में ही बातें करते रहोगे?
अरे धीरज अपने खेत की जमीन को किसी व्यापारी सेठ को बेचना चाहता है।
क्या कह रहे हो तुम? ये तुमसे किसने कहा?
कल पंचायत में सुखराम मिल गया था, वही बता रहा था। कह रहा था कि उस दिन धीरज ने उस सेठ को अपने खेत की जमीन भी दिखाई और कागज पत्तर भी।
हे भगवान, लगता है इस छोकरे की मति मारी गई है। मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी, अभी तुम जिंदा हो अपनी जमीन किसी के नाम ना करो, मगर तुमने मेरी सुनी कब है? जैसा बाप वैसा बेटा।
अब बेकार की बात ना कर, मेरे मरने के बाद भी सब कुछ उसका ही तो है।
वो बाद की बात थी, मगर अब तो तुम्हारे जीते जी वह मनमानी करने पर उतारू लगता है।
तू ज्यादा बावली ना बन, हम धीरज से बात करेंगे कि हम ये क्या सुन रहे हैं।
मैंने ये कभी सोचा भी न था कि धीरज अपनी रोजी रोटी को यूँ बेचने को तैयार हो जाएगा।
अरे जानकी, यूँ बेटे को कोसने से कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो उससे बात करके ही।
फिर भी धीरज के बापू, मेरा दिल कहता है कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो उसे अपनी मनमानी करने से रोक सके।
है जानकी, बिल्कुल है ऐसा एक रास्ता।
मतलब कौन सा रास्ता?
धीरू अभी ये भूल गया है जानकी कि उसका बापू अभी जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी वसीयत बदल भी सकता हूँ और धीरू को वसीयत से बेदखल भी कर सकता हूँ।
लेकिन इस छोरे को देखो तो सही, जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस जमीन पर हम खाने बेचने के लिए अनाज उगाते हैं, ये छोरा उसी जमीन को बेचने के फेरे में है।
तू जानती नहीं आजकल के किसानों को, नए जमाने की हवा लग गई है। पहले तो ट्रैक्टर पर बैठकर भी किसी तरह से अपना लाट साहिबपन पूरा कर लिया करते थे, लेकिन अब उन्हें भी महंगी विदेशी मोटरसाइकिल और महंगी महंगी मोटर चाहिए।
हाँ, जिसमें बैठकर वो अपने पैसे का रुबाब बता सके।
और तुझे पता है जानकी, इन सब शौक को वो सब कैसे पूरा कर रहे हैं?
कैसे?
अरे खेती की जमीन को बड़े बड़े व्यापारियों और भू माफियाओं को महंगे दामों में बेचकर पूरा कर रहे हैं।
फिर वो अपने आगे की रोटी पानी का जुगाड़ कैसे करते हैं?
कैसे करते हैं? या तो किसी दूसरे धंधे में पैसा लगा देते हैं, धंधा चल गया तो ठीक, वरना आखिरी में कहीं नौकरी करने की नौबत आ जाती है।
मतलब जब तक जमीन की बिकवाली का पैसा है तब तक मौज मजा है, उसके बाद तो ताता थैया हाय हाय है।
और क्या?
फिर हमारे धीरू का क्या होगा? आज अपनी जमीन बेचकर कल वह किसी की चाकरी करेगा?
अब यही चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है।
सचमुच ये छोरा तो हमें अब नई मुसीबत में डालने जा रहा है, इसे जल्दी से जल्दी समझाना पड़ेगा।
तू सही कहती है जानकी, वरना हमारे इस लंबे चौड़े खेत की जमीन पर कल कोई फैक्ट्री या कोई स्कूल नजर आ जाएगा।
धीरू के बापू, अब तो हमें अपने छोरे से बात करनी ही होगी। अब सोचो, धीरू की बहन के ससुराल में जब ये खबर पहुँचेगी तो उसके ससुराल वाले अपनी छोरी का क्या करेंगे?
तू सही कहती है, आज इस छोरे से बात करके ही दम लूंगा मैं।
सविता, धीरू कहाँ गया है?
हाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गया है क्या?
हाँ, शहर गए हैं अम्मा, बच्चों की स्कूल की किताबें और ड्रेस लेने, और तहसील भी, उनको कुछ काम है, तहसील भी जाएंगे।
कब का गया हुआ है?
सुबह के गए हैं।
अब तो तीसरा पहर भी हो गया है।
मेरे ख्याल से आते ही होंगे।
तहसील में क्या काम पड़ गया उसे, तुझे बताया नहीं?
नहीं अम्मा।
अरे, तुझसे कितनी बार कहा है सविता कि तू हमारी बहू सही, मगर हम तुझे अपनी बेटी की तरह ही चाहे हैं। तू घूंघट मत लिया कर। अब देख, सब्जी काटने में तुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कहीं उंगली ना काट बैठना अपनी।
नहीं अम्मा, धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है।
ये पर्दा वर्दा अब बीते जमाने की बात होती जा रही है, फिर भी इन गांवों में जागृति ना जाने कब आएगी।
अच्छा बहू, एक बात बता, धीरू ने तुझसे अपने खेत की जमीन को बेचने के बारे में कोई बात की थी?
अपने खेत की जमीन को बेचने के बारे में? नहीं तो।
मतलब ये बेटी कि उसने तुझे अभी तक हवा भी नहीं लगने दी?
मगर ये बात गलत भी तो हो सकती है अम्मा।
नहीं बेटी, बात बिल्कुल सही है। वह किसी सेठ से अपने खेत की जमीन का सौदा करने के चक्कर में है।
मगर बापू, अगर वो इतना बड़ा काम करते तो आप लोगों को तो जरूर ही बताते, चाहे मुझे ना बताते।
दुख और गुस्सा इसी बात का तो है बेटी कि वह इतना बड़ा काम चुपचाप करने जा रहा है।
भगवान भला करे सुखराम का, जो इन्हें पंचायत में मिल गया था, उसने इनसे जमीन बेचने का यही सोचकर पूछा कि ये ही बेच रहे होंगे, मगर उसे भी आश्चर्य हुआ ये जानकर कि जमीन ये नहीं धीरू बेच रहा है।
अब तो मुझे भी चिंता हो रही है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अब ये तो करने वाला ही बता सकता है बेटी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
जमीन बंजर भी नहीं है, भरपूर फसल देती है, हमारे दिन आराम से गुजर रहे हैं।
फिर भी ना जाने क्यों।
वो आ गए अम्मा।
आ गया बेटा।
हाँ अम्मा।
धीरू, ये जो अपने खेत की जमीन तू किस सेठ को बेचने जा रहा है, क्या सही सुन रहा हूँ मैं?
हाँ सही है बापू।
मगर बेटा, कम से कम हमें तो ये बात तू बता ही देता, हमें बाहर वालों से सुनने को मिली है।
हाँ अम्मा, बात कुछ ऐसी ही है कि अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है, सिर्फ दिखाई नपाई और बात चल रही है बस।
मगर आखिर ये जमीन बेचने की सूझी क्या तुझे?
हाँ बेटा, आखिर कारण क्या है?
मैं अभी कुछ नहीं कह सकता अम्मा, क्योंकि अभी जमीन की कीमत फाइनल नहीं हुई है। अब मुझे आप लोगों से इस बारे में कोई बात नहीं करना है। सविता, खाना निकाल।
अभी निकालती हूँ।
देखा कैसा छोरा है, कहीं इस पर किसी ने जादू मंत्र तो नहीं कर दिया?
आजकल तो सबसे बड़ा जादू मंत्र रुपया ही है जानकी, रुपया, उसी पर सवार है ये शायद।
अगर ये नहीं मानता है तो तुम भी वकील से मिलकर वसीयत फिर से वापस ले लेना।
तू ठीक कहती है जानकी, यही करना पड़ेगा।
बापू, उस दिन तुम जमीन के सौदे का पूछ रहे थे ना, वो पक्का हो गया।
पक्का हो गया है? मतलब तूने हमसे बिना बताए अपनी जमीन का सौदा भी कर लिया?
हाँ, और हम तुझसे पूछते ही रह गए, अब तो तू हमसे भी बड़ा हो गया है बेटा।
देखो अम्मा, बात तुम लोगों की समझ में आएगी नहीं, फिर भी समझाता हूँ।
अच्छा, बड़ा समझदार हो गया है तू, है ना?
पहले बात को समझ लो, फिर तुम लोग भी मेरी समझदारी को मान जाओगे। देखो, एक सेठ है, सेठ गोविंद अग्रवाल, वो इस इलाके में जमीन खरीद कर फैक्ट्री या स्कूल खोलना चाहता है।
हे भगवान, खेती की जमीन पर फैक्ट्री या स्कूल,
देखो तो।
सविता, तू तो चुप ही कर, सुनो बापू, तो वह सेठ हमें हमारी जमीन की बहुत बढ़िया कीमत दे रहा है।
कितनी?
कितनी? अरे बापू, अपनी जमीन मुंबई आगरा राजमार्ग पर है, तभी तो वो पूरे 1,35,00,000 रुपए दे रहा है।
1,35,00,000?
हाँ हाँ, 1,35,00,000 रुपए, राजमार्ग की सड़क के किनारे होने के कारण। मैं तो पूरे 1,50,00,000 मांग रहा था, लेकिन सेठ राजी नहीं हुआ।
तू क्या समझता है कि ये 1,35,00,000 की जो बोली उस सेठ ने लगाई है, ये बहुत अच्छी और काफी कीमत है? अरे हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, अनमोल है, अनमोल। तू क्या समझेगा उपजाऊ जमीन का महत्व क्या है?
तुझे तो किसी ने उकसाकर नोट क्या दिखा दिए, तेरा सिर ही फिर गया जमीन बेचने के लिए।
तूने कभी सोचा भी है धीरज कि इस जमीन ने तुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया है? तू आज भी इसी की रोटी खाता है और इसको बेचने के बाद तू इस जमीन की बिकवाली से ही रोटी खाएगा? ऐसी जमीन को तू बेच देने जाता है?
देखो अम्मा, ये जो तुम जमीन का गुणगान कर रही हो ना, ये सही नहीं है। अरे जमीन हमें तब रोटी देती है जब हम मेहनत करते हैं, खेती करते हैं। अगर बिना मेहनत करे ही यह हमारे पेट की आग को ठंडा कर दे तो मैं भी इसे मानूं।
मगर अम्मा और बापू ठीक ही तो कहते हैं, तुम समझते क्यों नहीं?
मैंने तुझसे चुप रहने को कहा है सविता, तू इन सब बातों को नहीं समझेगी।
जमीन बेचकर भी बेटा तू कहीं न कहीं किसी न किसी काम में मेहनत तो करेगा ही ना, या वहाँ से भी तुझे बिना मेहनत करे ही रोटी मिल जाएगी?
हाँ, अब बोल।
वो बात अलग है अम्मा, और वो मेहनत भी अलग है। यहाँ तो इस जमीन पर बुवाई करो और बारिश का रास्ता देखो। बारिश नहीं आए या आने में देर हो जाए तो बुवाई के बीज सूख जाते हैं या सड़ जाते हैं।
और जो खेत में हमने बोरिंग करा रखी है वो
भी अभी 2 साल पहले ही कराया है। प्रदेश में आजकल बिजली की कितनी कटौती चलती है, आखिर हम फसलों की सिंचाई करें तो कहां से और कैसे करें?
मगर इसका ये मतलब भी नहीं है बेटा कि हम सारे किसान अपने अपने खेत बेच दें और अपनी खेती किसानी से अपना नाता तोड़ लें।
आखिर खेती किसानी हमारा पुश्तैनी धंधा है।
मगर ऐसी खेती किसानी से नाता जोड़ रखने का मतलब भी क्या है बापू, जिसमें महंगे दामों पर भी बीज ना मिले, सिंचाई के लिए पानी ना मिले, फसल खराब हो जाने पर मुआवजे के लिए सरकारी अधिकारियों के या तो चक्कर लगाओ या उन्हें रिश्वत दो, मंडी में अपना अनाज या अपनी फसल ले जाओ तो सही कीमत ना मिले। क्या मतलब है ऐसी खेती किसानी का आखिर?
ये माना बेटा कि एक किसान बड़ी मेहनत और कष्ट से किसी फसल को तैयार कर पाता है, लेकिन तू ये क्यों भूल जाता है कि हमारे गुजरे हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। जिस प्रकार इस देश के किसान मेहनत से इस देश के लोगों के लिए अनाज उगाते हैं, उसी प्रकार हमारे वीर जवान भी हर मौसम में देश रक्षा करते हैं। अगर वो भी सुरक्षा के काम से अपना नाता तोड़ ले तो इस देश का क्या होगा धीरू?
हाँ बापू ठीक कहते हैं।
धीरू, जैसे जवान देश की सुरक्षा करके देशभक्ति का कार्य करते हैं, वैसे ही हम किसान भी देश के लिए अन्न पैदा करके देशभक्ति का ही काम करते हैं, और तू देशभक्ति से पीछे हटने की बात करता है।
चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ अम्मा, लेकिन तुम उन किसानों का क्या कहोगी जो आए दिन अपनी खेती की जमीन पर प्लाट काट कर कॉलोनियां बनाकर बेच रहे हैं? क्या उन्हें देशभक्ति की फिक्र नहीं है? और अगर उन्हें देशभक्ति की फिक्र नहीं है तो फिर मैं अकेला ही ये फिक्र क्यों करूं?
देख धीरू, जो देशभक्ति की अपनी राह से हट रहे हैं और दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बन रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दे। लेकिन अगर वहीं तू लोगों के सामने फिर भी खेती किसानी के रूप में देशभक्ति का अच्छा उदाहरण रखेगा तो लोग यानी कि बाकी किसान भी ऐसा ही करेंगे, ये मेरा दावा है।
हाँ बेटा, इसीलिए किसी की नकल करने के बजाय ऐसा काम कर कि दूसरे लोग तेरी नकल करें।
बिल्कुल बापू, आप सही कहते हैं।
वाह बापू वाह वाह, औरों को अपनी नकल कराने से क्या कभी कोई हरदम अपना पेट भर पाया है?
अगर ऐसे लोगों का पेट भरा नहीं तो खाली भी नहीं रहा है। मैं कह देती हूँ ये जमीन किसी भी कीमत पर बेचने नहीं दूंगी, तुझे खेती करना है तो कर, वरना हम काश्तकार रख लेंगे।
तेरी अम्मा सही कहती है धीरू, सोच ले तू।
सोचना मुझे नहीं तुम लोगों को है, सोच लो कि इतनी कम कीमत है ये या ठीक है, वरना कल को राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए अगर सरकार ने हमारी कुछ जमीन अधिग्रहण कर ली तो मुआवजा कितना मिलेगा? ये तुम्हारे सोचने की बातें हैं, फिर जमीन न खेती के लायक रहेगी और न बेचने के लायक रहेगी।
सोचना तुझे है, तेरे बापू अभी जिंदा है और ये जमीन अब भी उनकी है, कल ये जमीन वो मेरे नाम कर देंगे, फिर क्या और कैसे बेचेगा तू?
मतलब बात तुम लोगों की समझ में नहीं आएगी, करो जो करना है करो करो।
गया, ये तो बावला ही हो गया है जमीन बेचने के लिए।
अम्मा बात मेरे समझ में आ गई, जब आज सारे लोग देशभक्ति की बात करते हैं तो फिर देशभक्ति से मैं क्यों पीछे हटूं? मैं भी अपने पुरखों की जमीन पर खेती करके अपने देश के लोगों के लिए अनाज उगाऊंगा, ताकि हमारा देश अनाज के मामले में दूसरे देशों का मुंह न ताके और तरक्की पे तरक्की करता जाए।
बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मगर आज सारे लोग देशभक्ति की सिर्फ बातें करने के बजाय अपना अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करे तो आज हमारा देश जहाँ है वहाँ से बहुत आगे निकल जाएगा।
सच अम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे देशभक्त पति के साथ साथ ऐसा परिवार मिला जिसने गलत राह पर जाते अपने बेटे को सही राह बताया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी तरह भगवान हर लड़की को ऐसा ही परिवार दे
और हर परिवार को तेरी जैसी बहू। अभी आपने सुना नाटक जमीन। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। बापू की भूमिका में थे दिनेश सोलंकी, जानकी अनुराधा सोलंकी, धीरज माइकल होजिस और सविता मैरी प्रीति जोजो।